देखते हैं अगली सूरत, सूरत तकासुर। तकासुर सूरा मक्की सूरत है और इसका नाम एक और भी बुखारी में आता है, अलहाकुम, इसके पहले ही लफ्ज़ से। इसी तरह सहाबा कराम ने इसको सूरतुल मकबरा भी कहा गया, क्योंकि इसमें आता है हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तो ये तीन नाम है इसके जो लिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा इसका नाम सूरतुत तकासुर है। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया इंसान के रवैये की बात की गई है कि इंसान कैसे इस दुनिया में रहते हुए ज़िंदगी गुजार रहा है, जबकि अलकारिया आने वाली है, लेकिन इंसान का हाल क्या है। तो बहुत देखिए रेलिवेंट है। सूरह जिलजाल आई, फिर आदियात आई कि इंसान का रवैया ये, और उसके बाद सूरतुल कौरिया आई, और उसके बाद सूरतुल तक्यासुर के अब इंसान का रवैया क्या, यानी कयामत के दिन की बात होती है और उसके बाद इंसान के एटीट्यूड की बात होती है कि इंसान का फिर देखो एटीट्यूड क्या है, कि इंसान कितना रिलैक्स्ड है इस दुनिया में। कौरिया आने वाली है और उसको इसका होश नहीं है, जबकि लोगों का क्या हाल होगा उस वक्त, और ये सुन के भी जान के भी, और फिर उसके बाद देखो किस चीज़ में पड़ा हुआ। तो इस सूरत को आप देखेंगे, ये सूरत भी बहुत स्ट्रॉन्ग सूरतों में से है, बल्कि एक जगह पे आता है ज़्यादा, वो कोई कवि तो हदीस नहीं है, मगर उसमें ये आता है कि ये सूरत पढ़ना 1,000 आयतें पढ़ने के बराबर है, ये सूरत का पढ़ना, गो के ज़ईफ़ हदीस है। तो ये भी हमें इस सूरत में पता चलता है कि इंसान ज़रूर जहन्नुम को देखेगा और उससे नेमतों का सवाल होगा, ये भी हमें इसी सूरत में पता चलता है। तो पिछली सूरत के बाद इस सूरत का आना बहुत रेलेवेंट है। उसका सेंट्रल जो मैसेज था कयामत और आमाल का तुलना, और इसका इसमें इल्म की बहुत बात की गई है, कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, इस तरह से। तो इंसान को बताया गया है कि इल्म दिया गया है कि कौन सी चीज है जो उसको डिस्ट्रैक्ट करती है अलकारिया से, उसके उस दिन की याद से, उसके दिन की जो होना है उसके साथ जो आमाल का तुलना है उससे बिल्कुल गाफिल किए हुए। और अलकारिया का एंड देखें और अतकासुर का स्टार्ट देखें, वो नारुन हामिया पे खत्म हुआ, और ये इसका स्टार्ट कि क्या चीज है जो इंसान को नारुन हामिया में ले जाएगी। पिछली सूरत में आप देखें थर्ड पर्सन में बात हुई है, वो जिसका अमालनामा तोला तोला जाएगा, उसके अमाल भारी होंगे, या वो जिसका ये मवाजीन हल्के होंगे, और इसमें डायरेक्ट कुम से बात की गई सेकंड पर्सन में। जब थर्ड पर्सन में बात की जाती है ना, तो शायद इंसान कोई सोच सकता है फलां की बात हो रही है, फलां की बात हो रही है, मैं तो नहीं हूं, लेकिन जब सेकंड पर्सन में बात की जाए ना, तुम ऐसे, तुमने ये किया, तो बहुत फर्क होता है और इंसान एकदम अलर्ट हो जाता है कि मेरी बात है। तो इसमें डायरेक्टली हमसे बात की जा रही है, और हमें इस चीज को अपने ऊपर सोचना है, ना कि दूसरे लोगों को सोच रहे हैं। बाज ने कहा कि ये मदनी सूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है, जमहूर के मुताबिक ये मक्की ही सूरत है। और मदनी इसलिए कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को मदीना में भी तिलावत फरमाया था, और जब एक वाकया हुआ था, और वो वाकया हम देख लेंगे इंशाअल्लाह ताला जब ये सूरत एंड होगी उस वक्त। पहले देखते हैं इस सूरत को بسم الله الرحمن الرحيم. الهاكم، الهاكم لهف سي، لام ها واو. لہو کہتے ہیں، اب جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، کھیل ہے اور جس کو ہم کہتے تماشا. تو اصل میں لہو وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو ڈسٹریکٹ کرے، اپنے اندر مشغول کر لے، انگیج کر لے اس کے دل کو. ہم اس کو انٹرٹینمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو ایسی بھی چیزیں کہہ سکتے ہیں جو کہ دل کو غافل کر دیتی ہیں. جو مور امپورٹنٹ چیز سے ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں. اللہ کا مطلب ڈسٹریکٹ ہونا ہوتا ہے، غافل ہونا. یعنی آپ کی کوئی بہت امپورٹنٹ چیز تھی، آپ اس کو بھول گئے کیونکہ آپ ڈسٹریکٹڈ تھے، کسی اور چیز میں مشغول ہو گئے تھے، کسی اور چیز میں بزی ہو گئے تھے. تو الہاکم، ڈسٹریکٹ کر دیا یا غافل کر دیا تم کو. کس چیز نے غافل کر دیا؟ کیا چیز ہے جس نے غفلت میں ڈالا ہوا ہے؟ اچھا، اب اس کو میں آپ کو ایسے بتاتی ہوں، آپ اس کو ایسے سمجھیں الحاکم کو، کہ آپ مثلا ہے کہ ایئرپورٹ پہ گئے ہیں، آپ نے فلائٹ پکڑنی ہے، آپ جو لاؤنج ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ویٹنگ لاؤنج میں. اب آپ وہاں پہ گئے اور آپ نے کسی ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھانا شروع کر دیا، اور ادھر اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے جانے کی کہ آپ کی فلائٹ جانے والی ہے، لیکن آپ کو کوئی ہوش نہیں ہے، آپ اپنے ہی کھانے پینے میں اتنے بزی ہیں کہ آپ کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے تو فلائٹ پکڑنی تھی، میرا تو مقصد یہاں پہ آنے کا ہی یہ ہے کہ میں فلائٹ لے لوں، میں نے تو کہیں جانا ہے، میں تو یہاں پہ بیٹھا ہوں یہ اس لیے نہیں کہ میں کھانے پینے کے لیے آیا ہوں، میں تو یہاں پہ کھانا پینا، چلو بھوک لگ رہی ہے میں کھا پی رہا ہوں، لیکن اصل تو میں کس لیے ہوں یہاں پہ؟ کہ مجھے کہیں جانا ہے، کہیں پہنچنا ہے. تو انسان خود سوچیں اس دنیا میں کیا کرنے کے لیے آیا ہے، اور وہ جب ڈسٹریکشن میں پڑ گیا تو وہ اس مسافر کی طرح ہے جو کہ ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھا ہوا، جانا اس نے کہیں ہے، اس نے فلائٹ پکڑنی ہے اور وہ بھول ہی گیا کہ اس نے فلائٹ پکڑنی، کیونکہ اب وہ شاپنگ کر رہا ہے، کبھی وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے وہاں پہ، اور دکانیں بھی ہوتی ہیں وہاں پہ، اسے شاپنگ کرنا شروع ہو گیا، وہاں پہ کھانا کھانا شروع ہو گیا، وہ بھول ہی گیا، وہ آرڈر پہ آرڈر دیے جا رہا ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ میری تو فلائٹ جانے لگی ہے، میری تو اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں، میں کدھر لگا ہوں. اس کو کہتے ہیں اللہ، یعنی بالکل غافل ہو جانا اس چیز سے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی اور چیز میں. یعنی کہ وہ دوسری چیز بالکل ہی ان امپورٹنٹ تھی، بالکل ہی ایسے ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ مل رہا ہو، جیسے آپ وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اس کو فائدہ ہے، یا آپ شاپنگ کر رہے ہیں چلو ایک فائدہ ہے، آپ کو چیزیں خرید رہے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس کو غافل کر دے، لیکن اس نے اس کو غافل کر دیا. تو کہا گیا الہاکم، ایک تو کم کو آپ نوٹ کریں، تمہارے لیے کہا جا رہا ہے، تم کو غافل کیے رکھا. یہ نہیں کہ تم ایک دفعہ غافل ہو، تم ساری زندگی غافل رہی ہے، آگے بھی جا کے اس کا پتہ چلے گا آپ کو، حتیٰ زورتم المقابر سے، یعنی تم غافل ہی رہے، تم کو غفلت میں ڈالے رکھا کس نے؟ کوئی چیز تو ہوگی نا، جیسے یہاں پہ میں نے آپ کو مثال میں کہا کہ کھانے پینے نے یا شاپنگ کرنے نے، کس چیز نے یہاں پہ اس صورت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اب یہ آپ اس کو غور سے سنیں، کیونکہ یہ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گا، اتنا بڑا میسج دو الفاظ ہیں صرف، اور پوری انسان کی زندگی ڈیفائن ہو گئی ہے اس میں، پورا انسان کا ایٹیٹیوڈ لائف کا ڈیفائن ہو گیا کہ کیا اس کا طرز عمل رہتا ہے، انسان کس طرح زندگی گزارتا ہے. تو الحاکم پہلے کہہ دیا گیا کہ آپ ڈسٹریکٹڈ ہیں، آپ غافل ہیں، کم کسی انسان کی نہیں بات، آپ غافل ہیں، آپ ڈسٹریکٹڈ ہیں. किस चीज ने आपको डिस्ट्रैक्ट किया है? अत्यासुर, तकासुर ने, तकासुर किससे? कसरत, आप समझते हैं ना, कसरत, कसीर, लॉट्स, लॉट्स ऑफ थिंग, कसीर हम उर्दू में भी बोलते हैं कसरत। कसरत ने डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है, कसरत ने गाफिल किया हुआ है। कसरत किस चीज की कसरत? इसको ओपन छोड़ दिया गया। वैसे तो हमें पता चलता है दूसरी जगहों से, या लतीना मनु ला तुलहिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ए ईमान वालो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना करने तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की फरमा बरदारी से। ये माल और औलाद बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, बहुत गफलत में डाल देती हैं, रुकावट बन जाती हैं। हालांकि ये कोई बुरी चीजें नहीं है, लेकिन यही सबब बन जाती हैं गफलत का, डिस्ट्रैक्शन का। यानी इंसान इतना इनके अंदर मशगूल हो जाता है कि उसको याद ही नहीं रहता कि मैं यहां पे आया किस लिए हूं। अब एक तो ये बात हो गई, ठीक है, और किस चीज ने डिस्ट्रैक्ट की, किस चीज की कसरत ने डिस्ट्रैक्ट किया वह? अब माल और औलाद तो एक चीज है, लेकिन यहां पे माल औलाद नहीं कहा गया, इसको ओपन छोड़ दिया गया। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं हर एक के लिए माल और औलाद हो, इनकी कसरत। अब कसरत कैसे वो हम आगे बात करेंगे, मगर जरूरी नहीं हर एक के लिए माल और औलाद हो जो उसको गाफिल किए हुए हैं। किसी के लिए कोई और चीजें भी हो सकती हैं, आपके कोई और शौक हो सकते हैं, किसी को जेवर का शौक है, किसी को कपड़ों का शौक है, किसी को एंटीक्स जमा करने का शौक है, किसी को कारोबार एक से एक आगे बढ़ाने का शौक है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है ना। लेकिन कसरत, तकासुर के क्या क्या माने आप ये देख ले। कसरत क्या? और की चाहत, मेरे पास ज्यादा हो, इसमें तुम पड़ गए हो। अब वो चाहे किसी का बिजनेस है, एक बिजनेस है उससे अच्छी भली कमाई आ रही, नहीं चलो एक और भी शुरू करते हैं, क्या हरज है एक और शुरू करने में, एक और भी शुरू करते हैं। एक गाड़ी है अच्छी भली चल रही है, मगर क्यों ना लेटेस्ट ले। अच्छा फिर कपड़े हैं बेशुमार हैं, मगर अब देखो आजकल क्या और क्या आया हुआ मार्केट में, उसकी सर्च कर रहे हैं, वेबसाइट पे बैठे हुए हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, घंटों 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 गुजर गए। ये क्या है, इसने गाफिल किया वह, भुला दिया वह वो काम जो करने के लिए इस दुनिया में आए, मकसद हयात को भुला दिया, अल्लाह की इबादत भुला दी, अल्लाह का जिक्र भुला दिया, बाज दफा नमाज भुला दी, कोई नेकी का काम कर सकते उस वक्त वो भुला दिया। किस चीज से गाफिल किया वो भी यहां पे नहीं है, और किस चीज ने गाफिल किया वो भी स्पेसिफिकली नहीं है, क्योंकि ये ओपन है। आखरत भुला दी, अल्लाह की इबादत भुला दी, अल्लाह का जिक्र उसे गफलत दे दी, उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, अल्लाह की फरमा बरदारी से वो नेक आमाल जो तुलने हैं मीजान में उनको ही करने से डिस्ट्रैक्ट कर दिया, उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं रही, क्योंकि अब आप बैठे में, अब आप अपने कारोबार में मशगूल हैं, उसकी इतनी ज्यादा यानी इतनी मसरूफियत है, उसके लिए इतना वक्त चाहिए, उसके लिए इतनी मेहनत चाहिए, उसके बाद तो कोई वक्त ही नहीं बचता, उसके बाद कोई एनर्जी भी नहीं रहती। और नेकी के कामों को और जो आखरत में काम आने वाली अमल है उसके लिए क्या सोच रखा है, कर लेंगे जब बुढ़ापा आएगा, कर लेंगे अभी क्यों, इतनी जल्दी क्या है। तो अहम मकसद जो है उससे हटा के गफलत में डाल दिया तुम्हें इस तकासुर ने। तुम जरूरत का नहीं ले रहे होते, तकासुर ने, जरूरत यहां पे नहीं कहा गया, कसरत की चाहत कि ज्यादा हो जाए मेरे पास। अगर 10 जोड़े हैं तो 15 होने चाहिए, और भी होने चाहिए, और भी होने चाहिए, और भी होने चाहिए, कभी दिल भरता ही नहीं। अब लेटेस्ट दे रहे, अब ये पसंद आ गया, अच्छा, अब वो ले लिया, तो अब एक और देखने बैठ गए, हालांकि हैं एक और लेने बैठ गई, फिर और देख रहे हैं, नहीं, फिर अब नई पार्टी आ रही है, एक और जगह पार्टी पे जाना है, कोई और होना चाहिए, वो देखने बैठ गए। ये तो खवातीन का हाल है, मर्दों का देख ले तो वो इन्वेस्टमेंट, यहाँ इन्वेस्टमेंट, ये स्टॉक वो स्टॉक, उस स्टॉक्स में ऐसे लगे हुए दिन और रात, उनको देख रहे हैं कौन सा ऊपर जा रहा है कौन सा नीचे आ रहा है, सर वक्त दिमाग पे वही सवार है। किस वक्त प्लान करेंगे आखरत, किस वक्त प्लानिंग होगी कि वहां के लिए क्या करना है। नेकी के काम करते वक्त भी अगर नमाज में भी वही याद आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया होगा पीछे, कारोबार जॉब वो ही सजदों में वो ही याद है, वो ही नमाज पढ़ते हुए कयाम करते हुए याद है, कभी भी दिमाग उसे फारिग ही नहीं है। और ये नहीं कि कुछ है नहीं, ये नहीं कि खाने को नहीं है, ये नहीं कि पीने को नहीं है, ये नहीं कि पहनने को नहीं है, ये नहीं कि जरूरियात नहीं पूरी हो रही, ये नहीं है, कसरत की चाहत और बात समझ आ गई। और अल्हा को माजी है, माजी में बात होने का मतलब है यही बात यकीनी है, इंसान का यही हाल है, कसरत चाहता है वो, हर वक्त उसको ये ख्वाहिश है कि और मिल जाए, मेरे पास इतना हो जाए इतना हो जाए इतना हो जाए। ठीक है, ये तकासुर का फर्स्ट मीनिंग। अब इन सिर्फ आप, क्योंकि थोड़ी सी ये मुश्किल बात है, आप सिर्फ ये दो आयतों को पहले को समझ लेंगे ना तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, आगे फिर आसान है। तो पहली बात तकासुर का मतलब, आप अलहाकुम का समझ आ गया मतलब, अब तकासुर को देखें, पहली बात ये और की ख्वाहिश, कसरत की ख्वाहिश, जरूरत की ख्वाहिश नहीं। देखिए जरूरियात इंसान की पूरी हो सकती हैं, याद रखें उसकी ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं हो सकती। अगर आपने अपने आप को यहां तक रखा कि मेरी बस जरूरत पूरी हो जाए, फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह जरूरतें पूरी हो जाएंगी आपकी, लेकिन अगर आप ख्वाहिशात को पूरी करने मिशन पे चल पड़े तो सारी जिंदगी गुजर जाएगी ख्वाहिशात पूरी नहीं होनी। और यहां पे क्या तकासुर, कसरत की ख्वाहिश, ये यहां पे किस चीज की ख्वाहिश, ज्यादा हो मेरे पास, ज्यादा होने की ख्वाहिश। और वो ज्यादा होना किसमें, मैंने आपको बताया हर एक की अपनी अपनी चीजें हैं, किसी के लिए कपड़े ही हैं, किसी के लिए बिजनेस है, किसी के लिए कोई और चीज है जो उसको वो चाहता है कि ज्यादा हो मेरे पास। दूसरा तकासुर में क्या है, मुकाबला करना, कंपीट करना। फिर कसरत यहां तक नहीं रह जाती कि ख्वाहिश है कसरत की, ज्यादा हो जाए ज्यादा हो जाए, जितना ज्यादा होता जा रहा है मुकाबले और होते जा रहे हैं। हाँ जी, फलाने के बच्चे की शादी ऐसी हुई थी, मेरे बच्चे की ऐसी होनी चाहिए, फलां के पास ये गाड़ी है, हमारे पास इससे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, फलां का घर इतना बड़ा है, हमारा घर इससे ज्यादा खूबसूरत और बड़ा होना चाहिए, ओ उसके पास लेटेस्ट फोन आ गया और मेरे पास लेटेस्ट फोन नहीं है, मुझे भी लेना चाहिए, उसकी जॉब इतनी और उसके लिए इतनी तकी कर गया, मैंने भी वहां तक पहुंचना है, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, उनकी यहां यहां इन्वेस्टमेंट हुई हुई है और मेरे पास क्या है। उसके साथ मुकाबला करना, मुकाबला क्या कहा गया था, किसमें करो, साबिकू इला मगफिरत मिन रब्बिकुम जन्नत, कहीं कुरान में ये नहीं कहा गया मुकाबले करो मालों में, चीजों में, ओहदों में, स्टेटस में, घरों में, गाड़ियों में, ये कहीं मुकाबले को नहीं कहा गया। उसके पास इस ब्रांड की ये चीज है, मेरे पास वो ब्रांड नहीं, मैं भी अब मुकाबला कर रही हूं कि मैंने भी वहां तक पहुंचना है, मेरा मुकाबला ये है, या मैं उससे आगे निकल गई हूं और लोग पीछे रह जाएं, तो मुझे ये मुकाबला करना है कि मैं सबको पीछे छोड़ जाऊं और मैंने आगे होना है, वो मैं पीछे रह गई, मैंने लेटेस्ट फोन नहीं लिया, मेरे पास लेटेस्ट गाड़ी नहीं है, अब मैंने तो आगे निकलना है ना क्योंकि कंपटीशन तो मेरा ये है, तो अब मैं उसकी दौड़ में लगी हुई हूं। तो ये है सेकंड चीज। थर्ड चीज तकासुर में क्या है, इसी एक वर्ड में ये सारे माने हैं। तीसरी चीज है दूसरे पे अब फखर जिताना। अब देखें पहले तो ज्यादा 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 हो जाए, ज्यादा मिल रहा है तो अब मुकाबले शुरू हो जाए, और उसके बाद हाय अब किसी को कैसे पता चले कि हमारे पास कितना है, तो अब फखर जिताना वो भी तो जरूरी है, अब उसके लिए शो ऑफ करेंगे तो पता चलेगा ना, पीरी फखर कर सकेंगे, बातों बातों में लोगों को बता देना, हाँ जी बच्चे ने जिद की तो मैंने उसको फलां गाड़ी ले दी, बस जी क्या करें हम, फलां बेटी ने ये कहा तो हम उसकी फरमाइश पे यूरोप घूमने चले गए। वही आदमी कहता है बेगम ने ये मांगा तो मैंने उसको ये ले दिया। हमारा तो अपना जेट है ना, उसमें ही हम चले जाते हैं। अब ये हर एक की अपने लेवल की बात होगी, कोई कुछ किसी तरह से कहेगा, कोई किसी तरह से चिपकाएगा, हर एक अपने मुताबिक, जो उसके पास है जितना उसके पास है उसके मुताबिक फखर जताए दूसरों के ऊपर कि मेरे पास ज्यादा है। अब वो बातों बातों में भी कर सकता है, वो ऐसे फंक्शंस रख के ऐसी चीजें करके भी दिखा सकता है लोगों को कि जरा देखो तो सही हमारे पास कितना है। बस दफा लोग कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था इनके पास इतना है, वो इन्होंने ऐसा फंक्शन किया, वो देखो उसके पास गाड़ी ऐसी। अब किसी का बैंक बैलेंस तो खोल के कोई नहीं देख सकता, इसने फलां जगह घर ले लिया, उसने ऐसी घड़ी पहनी हुई थी, वो इस ब्रांड की है, उसने ये पर्स पकड़ा हुआ था। वो तो आपको पता है वो पर्स ही $1,000 का आता है। अब आप उसके जरिए क्या बताना चाहते हैं, फखर कि मैं तुमसे ज्यादा हूं। तो ये जो तकासुर है ना, इसने तुम्हें गाफिल किया हुआ है, क्योंकि इन चीजों के ऊपर टाइम लगता है, इन चीजों पे भी मेहनत लगती है, इनको लिए पैसा कमाना पड़ेगा, फिर इन चीजों को खरीदना पड़ेगा, फिर इन चीजों को बताने के लिए दिखाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। कितना इसमें टाइम कंज्यूम होगा, कितना इसमें आपका दिमाग लगेगा। आपको पता है आपका दिमाग एक ही तरफ लग सकता है ना, यहां तो इस तरफ लगा ले कि जब बस आप ये सोच रहे हैं कि किस तरह मैं दिखाऊं, इस तरह प्लानिंग करूं, कहां से खरीदूं, ये चीज लूं कि ये चीज लूं, आजकल क्या ट्रेंड्स है, और अच्छा अब चेंजिंग ट्रेंड कौन सा आ रहा है, अब ये नए फैशन की चीज क्या है। तो हर वक्त उसी के अंदर लगे रहेंगे, क्योंकि ये एक चीज तो रहेगी नहीं ना, आज ये है तो कल कोई और चीज आ जाएगी, कोई और है तो परसों कोई और चीज आ जाएगी, और हमने पीछे थोड़ी रहना है। लेटेस्ट क्या चल रहा है, हमने तो लेटेस्ट में रहना है ना, सारी जिंदगी उस लेटेस्ट के मुकाबले करते करते जिंदगी खत्म हो जाती, इंसान उसी में मशगूल है, इंसान उसी में ऐसा डिस्ट्रैक्टेड है, ऐसा वो उसके अंदर गफलत में पड़ा हुआ है कि उसको याद ही नहीं कि मेरा असल मकसद क्या है, यानी किस चीज की कसरत की चाहत ने उसको किया हुआ है, कौन सी चीज है। ये मैंने आपको बताया, ये भी ओपन एंडेड है हर एक के ऊपर, और किस चीज से गाफिल किया हुआ है वो भी ओपन एंडेड है। अल्लाह की फरमाबरदारी से गाफिल किया हुआ है, नेक आमाल से गाफिल किया हुआ है, अल्लाह की इबादत से गाफिल किया हुआ है, किसी को नमाजों से ही गाफिल कर दिया है। अब पार्टियां हो रही हैं, अब इतने इतने यानी फंक्शंस हो रहे हैं कि इंसान इतना थक रहा है कि अब क्या तहज्जुद पड़ेगा, फजर पे भी उठना मुश्किल हो गया, लेट नाइट पार्टीज है, या काम इतना ज्यादा है, नमाज किस वक्त पढ़े। हाँ तो जॉब में ही ये फजर हो जाती है जाते वक्त, क्योंकि उस वक्त हम जॉब के लिए जा रहे होते हैं, और फिर उसके बाद शाम को आ रहे होते हैं, असर भी चली जाती, जुमे की नमाज रह जाती है, कुरान पढ़ना सीखना रह जाता है। आप देख पूछ के देख लें लोगों को, क्या क्या वजह है कि वो कुरान को सीखने की तरफ नहीं आते, किस चीज ने उनको गफलत में डाला हुआ है, किस चीज ने उनको डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है, अपनी तरफ तवज्जो की हुई है, अपने अंदर किस चीज ने कंज्यूम किया हुआ है। वो कहेंगे टाइम नहीं है, वो टाइम किन चीजों में जा रहा है, आप पूछ के तो देखिए, वो टाइम कुछ तो करते होंगे ना, सारा दिन सोए तो नहीं रहते ना, कुछ तो करते होंगे, वो क्या चीजें हैं वो देख लेंगे। अब सब वो हैं अल्हाकुम तकासुर, वो इन दो लफ्जों में आ जाएंगी। याद रखें जब मेंशन नहीं है ना स्पेसिफिक कोई चीज, तो ओपन माना है, हर कोई अपने लिए सोचे कि मुझे किस चीज ने डिस्ट्रैक्ट किया है, कौन सी चीज है जो मेरी इतनी तवज्जो ले रही है कि मेरे पास अल्लाह के जिक्र का ही टाइम नहीं। हत्ता कि अल्लाह अकबर ने इतना अफसोस होता है कि कोई नमाज भी देख ले, मस्जिद में आप जाके देखें तो इधर इमाम साहब सलाम फेरते हैं, चाहे जुमा है चाहे कोई नमाज है, इस तरह लोग भागते हैं जैसे कि कैद से रिहाई मिल गई, इतनी तेजी से भागते हैं। क्या चीज है जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उनको जिक्र करने का भी, उनको अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह कहने का भी वक्त नहीं, इधर सलाम फेरा उधर उठ के भागे, कभी आप नोट करिएगा। दुआ करने का हमारे पास आज टाइम नहीं है कि हम दुआएं ही मांग लें, कुरान सीखने का वक्त नहीं, इसकी तालीम लेने का वक्त नहीं, एक पेज कुरान पढ़ने को कहा जाता है उसका वक्त नहीं है। ये नहीं कि हम अपनी जरूरियात के लिए भाग रहे हैं, हम अपनी ख्वाहिशात के लिए भाग रहे हैं, और ख्वाहिशात भी ऐसी कि जिस चीज की भी ख्वाहिश है उसमें कसरत हो जाए, चाहे वो पैसा है चाहे वो कोई भी चीज है, इसमें कसरत होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि जरूरत का हो, ये नहीं है। और इस चीज ने इतना मशगूल कर दिया, हम भूल गए हैं, हम भूल गए हैं कि हमारा मकसद हयात क्या था। जानते ही नहीं है मकसद हयात क्या है, क्या करने आए यहां पे, क्या दुनिया में इसी के लिए भेजे गए हैं। कोई वक्त ही नहीं है कि ये देख ही लें कि मैं दुनिया में किस लिए आई हूं। बस जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चे पैदा करें, घर बना रहे हैं, बस ये जानवर भी करते हैं, बस इतना ही कर रहे हैं। अगर इंसान की जिंदगी जानवरों की जिंदगी के मुताबिक हो जाए तो फिर क्या फर्क रह गया एक इंसान और जानवर में। तो तुम तो इतने बिजी हो गए, कसरत की दौड़ में तुम इतने लग गए, मुकाबले करने में तुम इतने बिजी हो कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं कि तुम सोचो कि मैं दुनिया में क्यों आया। अपने अंदर झांक के ही देख लो। जब कहा जाता है गौर व फिक्र करो, गौर व फिक्र का किसके पास टाइम है, किसके पास टाइम है गौर व फिक्र का? अपना मुहासबा करो, हिसाब लेने का अपने हम किसके पास टाइम है कि मैं ये देखूं मेरी नेकियां बढ़ रही हैं कि नहीं, मैं गुनाहों में कितनी डूबी हुई हूं, मैंने तौबा इस्तगफार करनी, ये गुनाह छोड़ना है, मैंने ये नेकी अपनी जिंदगी में लेकर आनी है, मैंने ऐसे करना है, मैंने अल्लाह ताला की फरमा बरदारी में आना है, मैं सीखूं तो सही, जानूं तो सही अल्लाह की फरमा बरदारी किस चीज में, किसके पास टाइम है भाई? बस चलते फिरते कहीं कान में एक बात पड़ गई, जाते जाते कोई खुतबा सुन लिया, जाते जाते कहीं किसी लेक्चर में से कोई बात सुन गई, बस इतनी ही काफी है, और सोचने का हमारे पास टाइम नहीं है। किस चीज ने हमें भुलाया हुआ है, जबकि कारिया हमारे सर पे खड़ी हुई है, खत्म होने वाला है ये सब कुछ, लेकिन तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। आप देखते हैं एक बच्चा है, उसका कल इम्तिहान हो, वो बैठ के तो टीवी के आगे गेम्स खेल रहा है। अब आप क्या कहेंगे उसको, आप कहेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, कल तुम्हारा इम्तिहान है, तुम्हारा इम्तिहान सर पे है, तुमने किस तरफ अपना वक्त लगाया है? आप जब ऐसे बच्चे को देखें ना तो अपने आप को सोचें, हम सब यही कर रहे हैं। वो एक नादान बच्चा है, जैसे वो गेम पे बैठा हुआ है और उसको होश नहीं है कि कल उसका इम्तिहान है। हम उसको तो बहुत डांटते हैं, बुरा भला कहते हैं, लेकिन हम अपने आप को भी देखें कि कल हमें अल्लाह की अदालत में खड़े होना है, वो तो इस इम्तिहान में फेल भी हो जाएगा ना, तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर हम फेल हो गए तो क्या है फिर, अभी आपने पढ़ा नारुन हामिया, हम किधर जाएंगे? तो वो जैसे उस बेकार चीज ने उसको डिस्ट्रैक्ट किया हुआ, और वो गेम खेल रहा और मजा कर रहा है, इसमें मजा आ रहा है, कोई इसमें शक नहीं है, वाकई मजा आ रहा है उसको, लेकिन क्या ये मजा वर्थ है कि इसके लिए वो अपने इम्तिहान को भूल जाए? इसी तरह क्या ये तकासुर, जिसमें आप तीनों माने ले लें, बार बार नहीं मैं बताऊंगी, तकासुर में तीनों माने ले लें, क्या ये वर्थ है कि इसकी वजह से हम अलहाकुम हो कि हम गाफिल हो गए हो, हमें होश ही ना हो, हम सोए पड़े हैं। और जब मैंने आपको बताया कि माल की कसरत और औलाद की कसरत का ज्यादा कुरान में जिक्र आया, जिंदगी को दुनिया के सूरह हदीद में जो हमने दुनिया की जिंदगी की हकीकत पढ़ी तो उसमें भी क्या, तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, तो औलाद में कसरत का मतलब ये नहीं कि हमें ज्यादा बच्चे पैदा करने वो कहा गया है, लेकिन हमारी तो ऐसी कोई चाहत नहीं है, ये नहीं है सिर्फ मतलब कि ज्यादा बच्चे हों, बल्कि बच्चों के लिए और चाहिए, मेरा बच्चे के लिए ये भी होना चाहिए, मैं ये भी छोड़ के चला जाऊं, ये भी छोड़ के चला जाऊं, चाहे बच्चे पीछे लड़ते रहें, और फिर मुकदमे उन्हीं के ज्यादा होते हैं अदालतों में जिनके वालदैन बहुत कुछ छोड़ के गए होते, वो ही एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, वो ही कहते हैं उसने लूट लिया, उसने खा लिया, उसने मेरा हिस्सा ले लिया, तो बच्चों के लिए छोड़ जाऊं, मेरा बच्चा इतना कमा ले, फलाने का बच्चा इतना कमा रहा है, फलां के बच्चे की शादी ऐसी हुई मैंने भी वैसी करनी, फलां अपने बच्चों को वेकेशन पे फलां जगह लेकर गया मैंने भी लेकर जाना, ये मुकाबले, बच्चों में भी मुकाबले, उसने इस एक्टिविटी में डाला है, मेरा बच्चा भी इस एक्टिविटी में हो, उसके बच्चे को फलां जगह एडमिशन मिल गया, मेरा भी होना चाहिए। अल्लाह अकबर, कि इंसान सारा दिन खुद को इन्हीं चीजों में थका रहा है। वही है जो किचन में ही लगे हैं, कसरत कसरत, ये डिश भी बना लूं, ये भी डिश बना लूं, ये भी डिश बना लूं, बस मेरे मुकाबले मैं तो फखर करती हूं, मैं तो देखो कितना अच्छा खाना बनाती, सारा दिन थक थक के घर की खिदमत कर करके बिस्तर पे लेट गए, ऐसे जैसे कि दुनिया में आने का मकसद पूरा कर लिया मैंने, को सारा दिन मैं ये चीजें बनाती रही, दोपहर के अलग खाने बन रहे, रात के अलग खाने बन रहे, फिर ये एक डिश नहीं बन रही, उसकी फरमाइश उसकी फरमाइश उसकी फरमाइश, सारी मेरी जिंदगी क्या अल्लाह को जाके बताएंगे कि मैं किचन में ही खाने बनाते बनाते जिंदगी गुजार के आ गई। आयशा रज़ी अल्लाह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था ना, ये एक दफा एक से दूसरा खाना बना रही थी, तो आपने फरमाया कि आयशा तुम्हारे पास यही शुगल रह गया। तो तकासुर, ये चाहत, ये और तो क्या, माल कमाना, क्या ये तिजारत करना, ये क्या नहीं होना चाहिए? क्या इसकी केयर नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, केयर करें, कमाएं, मगर देखें फिर दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को, वो बादशाह थे मगर उनकी बादशाहत ने उनको गाफिल नहीं किया। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जितना हमारे पास आता है हमारी गफलत और बढ़ती जाती है। आप देख लें, वो जो गरीब होगा या जो मिडिल क्लास होगा, तो बेचारा कभी फिर भी अल्लाह तौबा कर लेता होगा, जितना जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं, इधर से फोन, उधर ये, उधर बातें, उधर मीटिंग्स, इधर सफर पे जा रहा है, उधर जा रहा है, उसके पास कहाँ है? उसका तो बखेड़ा ही इतना ज्यादा है, उसका बिजनेस ही इतना फैला हुआ है, उसके पास कहाँ है? और फिर जब कमा लिया है तो अब उसको दिखाना भी तो है, तो अब दिखाएं कैसे? अब उसके लिए भी कुछ करना जरूरी है, फिर उस मुताबिक लोगों को बुला बुला के दिखाया भी जाता है, फिर उसमें भी तो एफर्ट लगती है, उसमें भी दिमाग लगता है, उसमें भी पैसा लगता है। इंसान ने जो जो जितनी ज्यादा नेमतों में और जितनी ज्यादा उसके पास माल असबाब चीजें होती हैं, फिर उतना ही ज्यादा वो अल्लाह ताला से गाफिल होता है, अल्लाह से दूर होता जाता है। उसकी बेयर मिनिमम तो नमाजें ही अगर हो जाए तो वो अपने आप को बड़ी चीज समझता है कि मैंने, देखो मैं नमाज तो पढ़ लेता हूं ना, और मेरी कितनी अच्छी बात है कि मैं नमाजें पढ़ लेता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला कयामत के दिन दुनिया के मालदारों को जमा करेगा और उनसे फरमाएगा किस चीज़ ने तुमको मेरे जिक्र से गाफिल कर दिया था? वो कहेंगे या अल्लाह हमारे मालों ने, मतलब हम इतने बिजी थे, भाग दौड़ इधर उधर, कहीं टैक्स हैं, कहीं सेल्स हैं, कहीं इंप्लॉयज के मसाइल हैं, कितना कुछ है ना, तो अल्लाह ताला फरमाएगा क्या तुम सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा मालदार थे? उनको तो उनकी बादशाहत ने, उनकी माल ने, उनके ओहदे ने अल्लाह की याद से गाफिल नहीं किया, तुम उनसे भी ज्यादा थे। अल्लाह अकबर, अब आदमी एक नमाज पढ़ने के लिए भी खड़ा हो और उसको अल्लाह की तरफ ध्यान ना लगे, बल्कि उसका दिमाग घूमता जा रहा है इन्हीं चीजों में जो कि बेकार है, वो अहम मकसद से गाफिल हो गया, घटिया चीज में मशगूल है, कम दर्जे की चीज में मशगूल है। तो आप सोचे, यही है ना अल्हाकुमुत तकासुर, इंसान भूला रहता है यहाँ की चीजों में, यहाँ की रौनकों में, यहाँ के माल असबाब में, यहाँ की जो भी अट्रैक्शंस हैं उनके अंदर, और उनको बढ़ाने के लिए उसके सारा दिमाग उसके अंदर खर्च हो रहा है, कैसे बढ़े कैसे बढ़े, इल्म भी लेता है तो इसलिए कि ज्यादा माल कैसे कमा लूं, इस दौड़ में लग जाता है, फिर मुकाबले होते हैं इस दौड़ के। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हारा ये हाल है, तुम्हें गफलत में डाले हुए है, कसरत की चाहत और कसरत के मुकाबले और कसरत के पर फखर करना, हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, हत्ता के तुम जियारत कर लो कब्रों की, यानी ये पूरी लाइफ तुम्हारा यही सिलसिला चलता रहता है, ये खत्म नहीं होता, हत्ता के तुम कब्र तक पहुंच जाओ, कब्र की जियारत कर लो।
यानी मरने का मतलब, या पे जरतुमल मकाबिर का मतलब है हत्ता के तुम मर जाओ, मौत तक तुम्हारा यही हाल रहता है। और वाकई कितनी इंसान है जो दुनिया से जा रहे हैं और क्या किया, क्या कमाई की, कमाई पैसों की नहीं, कमाई अमल की, कमाई क्या की, कुछ भी नहीं, हाथ में कुछ भी नहीं है क्योंकि वक्त ही नहीं मिला ना। भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, किधर भाग रहे हैं, बस कसरत 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 ज्यादा हो जाए। हसन बसरी फरमाते ना, माल और औलाद की कसरत की हविस जो थी ना, अब मैंने औलाद की कसरत की हविस आपको बता दी ना, ये नहीं है ज्यादा बच्चे बल्कि उनको ज्यादा मिल जाए, और माल की कसरत की ख्वाहिश जो हविस है, हविस कभी खत्म नहीं होती, इसमें मौत का ख्याल भी उसने परे फेंक दिया। यानी इसी शबो रोज में फंस के वो गफलत में पड़ा रहा, वो दुनिया के पीछे भागने में पड़ा रहा, हत्ता कि अचानक मौत आ गई और कब्र तक पहुंच गया। अल्लाह अकबर। इसी जो कसरत को पाने की कोशिश थी ना, उस वो ओवरलैप या गालिब आ गई आखरत की तलब पे, नेक कामों की तलब पे, ने कामों से बेपरवाह कर दिया। बस यही है दुनिया के उधेड़ बुन, दिन शुरू होता है यहीं की सोच रहे हैं ये ऐसे कैसे करना है, वहां कहाँ जाना है, वहां से कहाँ से आना है, ये चीज कहाँ से मिलनी है, फलाने का क्या हो गया, फलां बच्चे का क्या, उसका क्या, जॉब का क्या, यानी इतनी चीजें हमारे दिमाग में होती हैं जो लेस प्रायोरिटी की है, बाज उसमें लेस प्रायोरिटी की है और बहुत सारी हैं जो बिल्कुल बेकार हैं, जिनका कोई हासिल नहीं है। एक पर्स मेरे पास है लेकिन मुझे यह है कि ओ नहीं, फलां ब्रांड ने इनका पर्स हो जेवर बना लूं, अब उसको बैठ के देखते जा रहे हैं। कोई आदमी है तो इन्वेस्टमेंट ही उसकी खत्म नहीं होती। तो देखो फजूल कामों में इंसान लगा हुआ है, और ख्याल तो एक ही जहन में रह सकता है ना, या तो आखरत के ख्याल कर ले और वहां की जवाबदेही का, या फिर यहां के ख्याल कर ले। अल्लाह अकबर। तो तुम जियारत कर लोगे, हालांकि तुम पहुंच गए, जियारत कर ली तुमने कब्रों की, इसका मतलब कब्र पे पहुंच के ही इंसान को होश आता है। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि इब्ने आदम कहता रहता मेरा माल मेरा माल मेरा, हालांकि तेरा माल तो सिर्फ वो है जो तूने खा लिया, वो फना हो गया, और पहन लिया और वो फाड़ दिया, या सदका देकर बाकी रख लिया बस। और इंसान के पास एक वादी सोने की हो ना, एक वादी भी सोने की, तब भी वो कहता है कि एक और मिल जाए मुझे, उसका पेट सिवाय कब्र की मट्टी की और कोई चीज नहीं भर सकती। एक वादी भी इतना ज्यादा पैसा है फिर भी कहता है और होना चाहिए, और होना चाहिए, और होना चाहिए। तो यहां पे एक ये भी हमें बात पता चलती है कि जो इलाज है ना इंसान की इस बीमारी का, ये बीमारी है बहुत डीप है, ये दौड़ जब लग जाती है ना तो फिर ये मरने तक रहती है, लेकिन एक एक हिंट हमें इसका मिलता है यहाँ से कि इसका इलाज ये है कि कब्रों की जियारत की जाए, कब्रिस्तान जाया जाए, वहां देखा जाए। इसलिए नहीं हम क्या कहते, अजी फातिहा पढ़ने के लिए जाना है अपने, कभी इसलिए तो जाओ कि अपनी आखरत को याद कर सको कि मैंने यहाँ आना, ये है मेरा घर, मैं इसको भूली नहीं हूं, कोई इसके लिए नहीं जाता। अपने मरने वालों की कब्रें देखने के लिए जाते हैं, उनको विजिट करने जाते हैं। तो वहां जाओ और याद करो ये है मेरा ठिकाना, यहां पे मैंने आना है। अल्लाहु अकबर। और ये विजिट जो है इसको विजिट कहा गया, इसको जियारत कहा गया, कब्रों की जियारत। क्यों? इसलिए का कब्र भी मंजिल नहीं है, ये भी एक विजिट है, ये भी एक स्टेज है जो आखरत की मंजिलों में पहला स्टेज है, पहली मंजिल है। इसमें सिर्फ विजिट ही करना है, यानी यहाँ पे भी थोड़े ही अरसे रहना है, फिर उससे भी आगे जाना है। इसमें ये मैसेज पता चल रहा है। तो अब ये कब्र जो है, ये जन्नत का बाग भी बन सकती है और जहन्नुम का गड़ा भी बन सकती है। तो जब कब्रिस्तान जाएं तो लोगों की कब्रों को देखें और सोचें, कोई कब्र जन्नत का बाग बनी होगी कि उसके अंदर रहने वाले अपने जन्नत के बागों को देख रहे होंगे, खिड़की खुली होगी, अपने महलों को देख रहे होंगे, जन्नत की खुशबू आ रही होगी, और कोई जहन्नुम का गड़ा बनी होगी कि जो जिसके अंदर लोग देख रहे होंगे कि आग है और अजाब है। तो इस चीज से भी इंसान इबरत ले सकता है अपनी जिंदगी में, और इसको याद करके अपनी रविश को दुरुस्त कर सकता है। हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि जियारत की तुमने कब्रों की। कल्ला सौफा तालमून, कल्ला एक डांट का भी कलमा, सख्ती का है, हरगिज नहीं, यानी जो तुम कर रहे हो वो रवैया सही नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है, तुम जो गफलत में पड़े हुए वो सही बात नहीं है, मुकाबले बाजियों में जो पड़े हुए वो सही नहीं है। कल्ला हरगिज नहीं, सौफा तालमून, अनकरीब तुम जान लोगे, तुम्हें जल्दी मालूम हो जाएगा, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। किस चीज का पता चल जाएगा? कि इसकी वर्थ कुछ नहीं थी जिसके पीछे तुम भागते रहे। जब मौत आएगी ना, तब ये, यानी जब हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर है ना, कि जब मौत आएगी तब पता चल जाएगा कि तुम जो कर रहे थे और जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे थे उसकी यहाँ पे क्या वैल्यू है। तुम तो हाँ पत्थर ही जमा करते रहे, वो करंसी लेकर आ गए, इस करंसी ने वहां चलना नहीं है। तालमून है ना, हर एक को पता चल जाएगा, तुम सबको पता चल जाएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। इफलां को नहीं पता चलेगा, जो 70-80 साल दुनिया में रहे अब पता चल जाएगा कि वो तो समझ ही नहीं आई कि किस चीज के पीछे जिंदगी गुजारती। इसीलिए कयामत का दिन यौमुल हसरा कहलाता है ना, क्योंकि नेक आदमी भी उस दिन कह रहा होगा, हसरत कर रहा होगा कि काश मैं और नेकियां कर लेता, मैंने इतना सा टाइम भी क्यों जाया कर दिया, काश मैं कुछ और बना लेता। और जो जिंदगी को वैसे ही जाया करके आ गया, जिसने बहुत सारे दिन जाया कर दिए, बहुत सारे हफ्ते जाया कर दिए, महीने जाया कर दिए, साल के साल गुजर रहे, जाया होते जा रहे, यहीं की भाग दौड़ में लगे रहे, वो सोचे कितनी हसरत करेगा। जब एक नेक बंदा जो अंबिया के बराबर अमल भी लेकर आया हो तो वो भी हसरत करेगा। अल्लाह अकबर। हमारे जैसे लोग जिनकी बहुत सारे वक्त गुजर जाते हैं ऐसे ही, और हम परवाह भी नहीं करते, हमने कभी सोचा ही नहीं। सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर तकरार है, फिर कल्ला हरगिज नहीं सौफा तालमून, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। ये तकरार क्यों है? धमकी के लिए भी है। जैसे माँ बच्चे को कहे ना, ठहर जाओ, तुम ठहर जाओ, अभी मैं देखती हूँ तुम्हें। तो तकरार करने का मकसद ये होता है कि सख्ती, तुम्हें पता चल जाएगा, दुनिया में जाने वक्त भी पता चल जाएगा, वहां पहुंच के भी पता चल जाएगा। इंसान को कब्र में पहुंचते ही पता चल जाना, बल्कि क्या वहां तक पहुंचना तो क्या है, जब मौत के फरिश्ते ही आएंगे तभी पता चल जाएगा। आटे दाल का भाव जिसको कहते हैं, यहाँ पे तो अभी ख्वाहिशात ही खत्म नहीं हो रही ना, यहाँ पे तो अभी लग रहा है अभी भी काफी नहीं है, अभी थोड़ा और कमा लूं, अभी थोड़ा और कमा लूं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज कम हो मगर काफी हो जाए वो कहीं बेहतर है उससे जो बहुत ज्यादा हो और गाफिल करते। यानी जब ज्यादा होती है ना जब कसरत होती है तो इसका नतीजा क्या होता है? गफलत, गाफिल कर देती है। वो भी इंसान चैन से नहीं बैठता, वो अपनी जिंदगी के मकसद से गाफिल हो जाता है। हम अपने अंदर झांके, हम कितना दिन में कितना वक्त अपनी आखरत के लिए काम आने वाले कामों में गुजारते हैं, और कितना वक्त हमारा इधर उधर बेकार गुजर रहा होता है। अब रेशो अगर इक्वल है ना, 50-50%, तब भी हम नुकसान में हैं। रेशो अगर ये है कि 70% मैं आखरत का काम करती हूँ, 30% है कि मैं वो बेकार जाया करती हूँ, तब भी हम नुकसान में हैं। आगे पता चल जाएगा अगली सूरत यही आ रही। अल्लाह अकबर। अब ये सूरतें इसीलिए इतनी जामे और इसीलिए इतनी ज्यादा इनको समझने की जरूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, तो क्या तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है कि रोजाना रात को 1,000 आयतें पढ़ लिया करो? तो सहाबा घबरा गए, हम कैसे 1,000 आयतें पढ़? फरमाया सूरह तकासुर पढ़ लिया करो। यानी इसको, इस मैसेज को दोहराने की जरूरत है। अगर 1,000 आयात जितना हमें नहीं भी सवाब मिलता, तब भी ये मैसेज इतना जरूरी है कि हम इसको रिफ्रेश करें हर रोज, हर रात सोने से पहले इसकी याद दहानी कराएं कि कहीं मैं अलहाकुम तकासुर में तो नहीं हूं। भाई मुझे क्या तभी होश आएगा जब जुरतुमुल मकाबिर हो जाएगा, और पता तो चल जाना है, जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि मौत किसी की उसके सर पे खड़ी होती है और उसको पता नहीं होता, और वो सोचता है मौत अभी बहुत दूर है, और ये नहीं पता होता अगले लम्हे क्या होने वाला है। असल बसरी फरमाते हैं ये वईद पे वईद है, यानी एक वार्निंग पे दूसरी वार्निंग है। और इंसान के लिए डिसअपॉइंटमेंट है कि इंसान समझ नहीं आती, छोड़ दो इसको, ये क्या कर रहे हो? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा। कल्ला लहू तालमून इल्म यकीन, काश के, हरगिज नहीं, काश के तुम जानते होते यकीनी। यानी अभी तो हमें यकीन नहीं है, वैसे सबको पता है, हर एक को पता है मर जाना है, हर एक कहता है हाँ आखरत है, हाँ हिसाब किताब है, लेकिन क्या यकीनी इल्म है? यकीनी नहीं है। अब चाहे हम जितना मर्जी कहते रहे यकीनी इल्म है, यकीनी इल्म जानते कैसे होता है? यकीनी इल्म ऐसे ही है जैसे कि अभी इस वक्त हमारे पास यहाँ पे दिन का वक्त है, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता कि बाहर सूरज निकला हुआ है, यकीनी इल्म है ना। कोई इस वक्त नहीं कहेगा रात हुई भी है, ये होता है यकीनी इल्म। इस तरह का यकीनी इल्म काश तुम्हें होता तो यानी फिर तुम्हारी जिंदगी ऐसे ना होती, ये आगे महजूफ है, यानी फिर तुम ऐसा ना कर रहे होते कि अल्हाकुम तकासुर होते, अगर तुम्हें यकीनी इल्म हो जाता। किस चीज का यकीनी इल्म? ये नहीं बताया गया, मगर आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चल रहा है ना कि अल्हाकुम तकासुर शुरू में ही आया, कि ये कसरत की चाहत का अंजाम क्या होगा, ये जिंदगी की हकीकत क्या है। काश इसका यकीनी इल्म होता, काश ये पता होता जो तुम्हें जुर्तुमुल मकाबिर के बाद पता चलेगा ना, काश आज तुम्हें उसका यकीनी इल्म होता। कहने को तो हम सब कहते हैं हाँ जी कब्र में ये होना, ये होना, ये सवाल होना, ये, लेकिन क्या यकीनी इल्म है? अगर होता तो हम उन सवालों का आज, उनका अपने उनके उनके लिए तैयारी कर रहे होते, उनके लिए आज हम मेहनत कर रहे होते, फिर हम ये मुकाबले करने में अपना वक्त ना जाया कर रहे होते। हम कसरत 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 होनी चाहिए, और होना चाहिए, और होना चाहिए, इस दौड़ में ना लगे होते, फिर यही हमारी ख्वाहिशात ना होती, फिर हमारी ख्वाहिश सबसे ज्यादा ये होती कि कसरत हो नेकियों में, मुकाबले हो नेकियों में, फिर उसकी दौड़ लगाते। काश कि तुम्हें अगर पता होता, अब पता करने को यानी यकीनी इल्म होता, पता करने को तो हम कह देंगे ये काफिर को भी पता है कि उसने मरना है, हमें भी पता है हमने मरना है, सारों के जनाजे हम देखते हैं जाते हुए, कब्रिस्तान में दफन होते हुए हम देखते हैं लोगों को, हमें पता होता है कि वो सारे अपने घर वालों को छोड़ के चले गए, इन घरों को छोड़ के चले गए, कोई अपनी गाड़ियां नहीं लेके गया, कोई अपने घर नहीं लेके गया, कोई अपने पैसे नहीं लेके गया, कोई अपने जेवर नहीं लेके गया, कोई अपने कपड़े नहीं लेके, हमें सबका पता है, इसीलिए तो हम कहते रहते हैं सब पता है हमें, हमें कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं, तो पता वाकई हमें सभी कुछ है, लेकिन इल्म यकीन ही नहीं है, इल्म यकीन ही नहीं है हमें, आज तक नहीं है, इसीलिए हमारा वक्त जाया पे जाया होता जा रहा है और हमें कोई एहसास नहीं, हम कितनी देर फोन्स पे लगे रहते हैं, कितनी देर कंप्यूटर पे बैठे हुए वेबसाइट एक से एक देख रहे हैं, इससे ज्यादा अच्छी चीज मिल जाए ये खरीदारी कर लूं, अब तो शॉपिंग भी वो हो गई, ये शॉपिंग पे शॉपिंग कर रहे हैं, सारा दिन गुजर रहा है, ये एक चीज खरीद लूं, वो चीज खरीद लूं, ये कर लूं, ये हम ये नहीं सोच रहे कि रोटी खाने को है ना मेरे पास, पहनने को कपड़ा है ना, छत मेरे सर पे है ना, अब मैं अपने वक्त को अपनी आखिरत में काम आने वाले आमाल के लिए खर्च करूं, मैं अपने वक्त को, मैं अपने जहन को, मैं अपनी एनर्जी को, मैं अपनी ताकत को, मैं अपनी मेहनत इस रास्ते में लगाऊं, लेकिन मेरी मेहनतें कहीं और ही लग रही, क्योंकि इल्म यकीन ही नहीं है। अल्लाह अकबर, लतारबुन्नल जहीम, लतारबुन्ना है। अब देखें अंक ये अलबत्ता, ला अलबत्ता नून मुशद्दद भी है, तुम जरूर देख लोगे जहन्नुम को, आज तो जहन्नुम का सिर्फ पता है ना, इल्म यकीनी भी नहीं है, इल्म यकीनी से ऊपर भी एक इल्म होता है, इल्म यकीनी ऐसे होता है जैसे अब हम देखें कि मसलन कोई किसी को जैसे, अच्छा एक और मिसाल से देखें, फलस्तीन में हमें पता है, सबको पता है कि क्या हो रहा है, ये इल्म यकीनी है, हम रोज खबरों में सुनते हैं, ये इल्म यकीनी है, यकीन है हमें कैसा है, लेकिन जिस दिन हम उसकी कोई वीडियो देख लेते हैं या आंखों से जाके वहां पे देख लें, तो वो आइनुल यकीन है जो आगे आ रहा है, वो इल्मुल यकीन से भी ऊपर का दर्जा है, और एक है हक्कुल यकीन कि हम उसमें वक्त गुजारें उनके साथ, तो वो हक्कुल यकीन होगा, हम भी वहां रह रहे हैं और हमारे पर, अब सोचें कि इनमें सब में कितना ज्यादा फर्क है, इल्म यकीनी से ज्यादा आइनुल यकीन और उससे ऊपर हक्कुल यकीन कि आप उस चीज में से गुजर रहे हो, आपने धुआं देखा, आपको इल्म यकीनी है कि आग लगी है, आप वहां गए और आपने आंखों से आग देख ली, ये आइनुल यकीन है, अब आपने कहा पता नहीं आंख भी धोखा दे सकती है, मैं इसमें हाथ डाल के देखूं आग भी है कि नहीं है, ये हक्कुल यकीन है जब आपने हाथ डाल दिया, ये स्टेजेस हैं यकीन के। अब आप देखें कि आज हम इल्मुल यकीन तक भी नहीं पहुंचे, अगर हम इल्मुल यकीन तक भी पहुंच जाते ना तो हमारी जिंदगियों के रंग ढंग बदल जाते, तो तुम जरूर जहन्नुम को देख लोगे, जहीम कहा गया, जहीम जहां माँ कहते हैं भूखे शेर का घूरना, स्टेयर करना, जब भूख हो उसको और जैसे वो घूरता है उसकी आंखों के अंदर वो चीज होती है कि मैं पकड़ लूं इसको, ये मेरा शिकार है और मैं इस पे झपटा मार दूं, जहन्नुम ऐसे ही है इंसान के इंतजार में, और जरूर तुम देख लोगे, ये कब इंसान देख लेगा, एक तो कब्र में ही उसको दिखाया जाएगा, जानते हैं आप अगर इंसान नेक भी होगा तब भी पहले उसको दिखाया जाएगा, ये देखो जहन्नुम तुम इसमें जाते अगर तुम नेकियां ना करके आते, और फिर वह इमिनकुम इल्ला वारिदुहा, सूरह मरियम में है, तुम में से हर एक को उसके ऊपर वारिद होना पड़ेगा, हर एक को उस पे से गुजरना है, नेक है बद है चाहे वो कोई नबी क्यों ना हो उसको भी उसके ऊपर से गुजरना है, अल्लाह ताला इसी तरह तो दिखाएगा कि ये देखो पार हो भी गए तुम तो ये देखो जिससे मैंने तुम्हें बचाया, ताकि उसके अंदर एहसास हो कि ये क्या बला थी जिससे मेरे रब ने मेरे ऊपर फजल किया, इसीलिए तो वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा कि शुक्र है अल्लाह ने मुझे बचा लिया इससे, हर एक ने देखना है जहन्नुम को, तो कोई तो उसमें फिर गिर जाएंगे और कोई सिर्फ देखेंगे, इस तरह के पलक झपकने की देर तक देखेंगे, लेकिन देखेंगे जरूर, तो हमें पता चला कि हर एक हर बंदा जहन्नुम को देखेगा, कोई दूर दूर से देखेगा, कोई करीब से देखेगा, कोई बाहर बाहर से देखेगा, कोई अंदर जाके देखेगा, कोई भुगत के देखेगा। अल्लाहु अकबर। और कब्र में भी दिखा दिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि कब्र में दिखा दिया तो फिर तो उसको पता है कि मैंने नहीं जहन्नुम में गिरना, तो फिर आ, आ, क्यों ऐसा है? तो देखें, एक औरत को अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, वो दिखा देते हैं बेबी है, ये है, फिर भी वो कैसे दुआएं मांगती, खैर वो आफियत से आ जाए, ठीक हो सब कुछ, फिर भी उसको ये नहीं पता कि सेहत सलामती के साथ बच्चा हो जाएगा, फिर भी उसको कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ता है उस बच्चे को पैदा करने के लिए। तो ये तो सिर्फ एक उस तरह समझे कि जैसे औरत को अल्ट्रासाउंड करके दिखा दिया गया, इसी तरह एक कब्र के अंदर, एक सिर्फ मुमासलत तो नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, एक कब्र में सिर्फ एक खिड़की खोल दी गई, एक वो देखो, वो तुम्हारी जन्नत है, और ये थी जहन्नुम अगर तुम ना अमल करके आते। सुम्मा लतरवुन्नहा आइनुल यकीन, फिर अलबत्ता तुम जरूर देखोगे उसको आइनुल यकीन के साथ, ऐसे यकीनी तौर पे तुम उसको देखोगे, यानी आंखों से देखोगे तुम उसको। इसलिए कि जब जहन्नुम को हशर के मैदान में लाया जाएगा, वो चिंगाड़ी होगी, वो गुस्से में होगी, वो बिफरी पड़ी होगी, वो आपे से बाहर हो रही होगी कि मुझे छोड़ दो तो मैं इनको खा लूं, लेकिन उसको फरिश्तों ने बांधा होगा, जंजीरों में बांधा होगा, 70,000 जंजीरों में इसको बांधा होगा। वो इतनी बड़ी बला है, और कितना कितने फरिश्ते, कितने बड़े बड़े होते हैं फरिश्ते, कितने ताकतवर होते हैं फरिश्ते, एक फरिश्ता भी कितना ताकतवर है। और हाल ये होगा कि 70,000 फरिश्ते हर लगाम को पकड़े होंगे, क्योंकि 70,000 लगामी है, तो हर लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े होंगे, और फिर भी वो आपे से बाहर हो रही है। और जब उसको लाया जाएगा, आप सोच लें कि एक शेर मसलन है, आप कहीं एक जगह खड़े में एक शेर को ही लाया जाए, वो आपके सामने है, उसको पकड़ा भी हुआ है लोगों में तो जान निकल जाती है, इसको पकड़ा भी हुआ है लेकिन हालत क्या हो जाती है कि कहीं छूट के हमारे ऊपर ही ना आ जाए, और खास तौर पे अगर वो गुस्से में है, और वो हम तो एक कुत्ते से भी डर जाते हैं, और वो भौंक रहा हो और उछल रहा हो तो हम तो उससे भी डर जाते हैं। क्या बलाए जहन्नुम कि अंबिया भी हैबत और खौफ के मारे घुटनों के बल गिर जाएंगे, और हर कोई कहेगा नफसी 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 नफसी, अल्लाह मुझे बचा ले। काश तुम्हें इल्मे यकीनी होता। इल्मे यकीनी तो सिर्फ इस कुरान से ही मिल सकता है, पता तो लोगों को है लेकिन इस कुरान से इल्मे यकीनी मिलता है। और क्या चीज आके बताए फिर, कैसे पता चलेगा? और तो कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ इस कुरान के जरिए ही गफलतें दूर होती हैं, इंसान अपनी आखिरी मंजिल की तैयारी शुरू करता है। तो तुम जहन्नुम को इन आंखों से देखोगे, फिर सब के सब गिर जाएंगे घुटनों के बल। अगर नबियों का ये हाल है तो दूसरों का क्या हाल होगा? और वो जो टाइम वेस्ट करके आए, गुनाहों को तो छोड़ें, हमने तो कोई गुनाह ही नहीं किया, हमारे तो कोई गुनाह है ही नहीं, हमने कौन सा ऐसे बड़े गुनाह कर दिए, इंसान को बड़ा जोम होता है, तुम टाइम वेस्ट करके भी आए तो तुम खसारे में होगे, आगे आ रहा है ये, तब भी तुम अपने आप को नहीं बचा सकोगे। अल्लाहु अकबर। सब घुटनों के बल गिर जाएंगे और सब नफसी नफसी पुकारेंगे। अब तुमने यकीन की आंख से देख लिया, अब तुम्हें यकीन आ गया, तो यकीन की आंख से भी तुम जरूर देखोगे। ला में भी ताकीद है और नून मुशद्दद में भी ताकीद है, कोई शक ही नहीं, उस वक्त तो तुम्हें पता चल जाएगा ना कि आज दुनिया में जो तुम कर रहे थे वो किधर गया, उसमें से कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं, कुछ भी दे के खुद को छुड़ा नहीं सकते, कुछ भी काम आने वाला नहीं, वो अलमारियां भरी की भरी रह गई, वो तिजोरियां, वो सेफ बॉक्स जिसमें इतने खजाने जमा किए हुए थे, वो वैसे के वैसे ही पड़े रह गए, और वो बैंक बैलेंस और वो प्रॉपर्टीज वो कहाँ गई? तुसअलुन्ना यौम इदिन अनिन्नाईम, फिर उसके बाद ये होगा कि हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, फिर तुमसे पूछा जाएगा उन नेमतों के बारे में जो तुम्हें दी गई, उनका सवाल किया जाएगा, तुम जरूर पूछे जाओगे, यानी जितनी नेमते हैं, कितनी नेमते मिली उस सब के बारे में सवाल किया जाएगा। अब ये वो जगह है जहां पे मैंने आपको बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इस सूरत को पढ़ा था, वो कब थी कि हदीस में आता है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे कि उनके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और पूछा कि यहाँ कैसे बैठे हो। दोनों ने कहा या रसूल अल्लाह भूख के मारे घर से निकल खड़े हुए, यानी इतनी भूख थी कि घर में बैठ नहीं सके। और उस वक्त दूसरी जगह आता है दोपहर, सख्त गर्मी का आलम, और इस वक्त ऐसे लोग बाहर नहीं जाते थे ना, क्योंकि ऐसा वक्त होता है कि फिर लोग घरों के अंदर दुबक जाते हैं, सख्त गर्मी है, तो उस वक्त तुम्हें कौन सी चीज बाहर ले आई। तो वो कहते हैं कि भूख ने हमें इतना सताया कि हम घरों से निकल खड़े। फरमाया उस अल्लाह की कसम जिसने मुझे हक के साथ भेजा है, मैं भी इसी वजह से आया हूं घर से बाहर। फिर अब ये मिलके चले और एक अंसारी सहाबी के घर पहुंचे। अब वो अंसारी सहाबी अबुल हैसम उनका नाम है, वो उनके घर पहुंच गए। अब ये तीन बेहतरीन लोग हैं जो इस जमीन पे चलने वाले, और भूख इतनी है कि भूख से घर में चैन से बैठ नहीं सके। तो मालिक उनका नाम था, उनके घर चले। अबू हैसम उनका लकब है, वो जो बहुत सखी थे, उनकी सखाफत मशहूर थी। तो अब ये वहां गए, वो मदीना से थोड़ा बाहर रहते थे, तो वहां पे पहुंचे तो उनकी बीवी घर पे थी। उनसे पूछा कि वो कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो पानी लेने के लिए गए हैं, और वो आते ही होंगे, आप बैठे। वो बहुत खुश हुई, उनको कहा अहलन वसहलन मरहबा, कहा सलाम दुआ के बाद उनको बिठा दिया। अब थोड़ी देर में वो सहाबी तशरीफ लाए, तो वो इस कदर खुश हुए इन मेहमानों को देख के कि उन्होंने फरमाया मेरे जैसा आज कोई खुशकिस्मत नहीं कि जिसके घर में सबसे मुअज्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाए हैं। वो जल्दी जल्दी खुशी खुशी गए और जाकर उन्होंने खजूरें, कुछ ताज़ा कुछ खुश्क और ये ऐसी खजूरें लेकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और सहाबा के सामने खुश रखे। और फिर उन्होंने एक छुरी पकड़ी, तो आपने फरमाया दूध देने वाले जानवर को ज़िबा ना करना। वो गए और एक भेड़ ज़िबा की, बीवी को गोश्त दिया, उन्होंने पकाया और गोश्त भी आपके सामने रखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये गोश्त खजूर और ठंडा पानी रखा गया और आपको ये सर्व किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू जारी हो गए। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये देखा तो वो भी रो पड़े। उनको पता नहीं किस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए हैं, लेकिन उनको देख के रो पड़े। उमर ने ये देखा कि ये दोनों रो रहे हैं और खाना सामने पड़ा हुआ है, तो फरमाने लगे या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं जब खाना सामने पड़ा हुआ है। यानी जब भूख लगी थी तब तो समझ आता है ना कि इंसान रो सकता है, तो अब तो खाना मिल गया है। आपने अपना सर उठाया और सर मुबारक उठा के फरमाया ए उमर, और फिर अल्हाकुमुत तकासुर वाली पूरी ये सूरत पढ़ी। और जब आखिर पे आए के सुम्मला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन्नईम, तो आपने फरमाया वल्लाही हादा मिनन्नईमी तुसअलुना अन, ये हैं वो नेमतें जिनके बारे में सवाल किया जाएगा। और क्या था सामने पड़ा हुआ, कोई बफे नहीं लगा हुआ था, कोई डिशेस का अंबार नहीं था, कोई बहुत लेविश खाना नहीं था, सिर्फ तीन चीजें थी, खजूर पानी और गोश्त। और इनके बारे में फरमाया हिसाब होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो क्यों पड़े, एक तो हिसाब को याद करके कि इन नेमतों का हिसाब देना पड़ेगा, दूसरा ये कि जब गोश्त पक रहा था उस वक्त उसके नीचे आग जल रही थी, तो उलमा कहते हैं कि उसको देखकर ये भी जहन्नुम की आग को याद दिलाती है। तो ये नेमते हैं जिनका हिसाब होगा। हजरत उमर ने जो खजूर का कोशा खा रहे थे उसको वहीं रख दिया। फरमाने लगे, इसके बारे में भी अल्लाह के यहाँ पूछगिछ होगी? आपने फरमाया, हाँ इसके बारे में भी पूछगिछ होगी। सिर्फ तीन चीजों की पूछगिछ नहीं होगी। पर्दा पोशी के लायक कपड़ा दे, इतना कपड़ा के जिससे आप अपना तन ढांप सके। भूख रोकने के लायक खाना, वो टुकड़ा जिससे आपकी भूख बस मिट जाए। ये नहीं कि इतना खा लें कि फिर कहें हाय इतना खा लिया अब सांस भी नहीं आ रहा। ये नहीं, इसका सवाल होना है सिर्फ इतना जितना भूख को मिटाने के लायक, और सर्दी गर्मी में सर छुपाने के लिए छत। बस सिर्फ ये चीजें हैं जिनका हिसाब नहीं होगा, बाकी हर चीज का हिसाब होगा। हदीस में आता है, जब ये सूरत नाजिल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी तो सहाबा कहने लगे, हमसे किस किस नेमत का सवाल होगा? खजूरें खा रहे थे और पानी पी रहे थे, और वहीं उनकी उनकी भूख मिट गई, उनकी भूख वहीं खत्म हो गई। अब खाने के लिए उनकी भूख भी नहीं रही, ये बात सुन के कि अब हमसे इन नेमतों का भी सवाल होगा। और तिर्मिज़ी में आता है, नेमतों के सवाल में कयामत के दिन सबसे पहले ये कहा जाएगा, हमने तुझे सेहत नहीं दी थी? अब आप बताएं, हम सबको सेहत मिली हुई है ना, तो सेहत के बारे में सवाल होगा। क्या सवाल होगा, आप क्या सोचते हैं? सवाल यही होगा ना कि ये सेहत मिली थी, फिर तुमने मेरे लिए क्या किया? क्या किया अल्लाह के दीन के लिए? क्या किया अल्लाह ताला की फरमा बरदारी में? कितना इसका शुक्र अदा किया? कितना अल्लाह के आगे बिछ गए? कितना नेमत का इतराफ करके, इकरार करके, उसकी कदर पहचान के, और उसको अल्लाह के रास्ते में लगाया? पूछा जाएगा ना। देखें, एक बंदा है, वो रात को गर्मी में सोता है, सारी रात उसको गर्मी लग रही है, वो मच्छर काट रहे हैं और उसको मुश्किल में है। अब वो उठता है और फजर की नमाज पढ़ता है। दूसरा बंदा एसी में सोया, नरम बिस्तर पे सोया हुआ है, और फिर फजर के अजान होती है और वो सोया ही रह जाता है। आप बताएं, कौन सा बंदा ज्यादा इस लायक है कि वो उठे और अल्लाह की इबादत करे? कौन सा बंदा इस लायक है कि वो उठे और कहे कि मेरे अल्लाह ने मुझे ये नेमतें दी हैं, तो मुझे तो और ज्यादा अल्लाह ताला के आगे बिछ जाना है। अल्लाह अकबर, तू जितनी नेमतें ज्यादा, हिसाब ज्यादा, उससे कहा जाएगा तुझे सेहत नहीं दी थी, तुझे ठंडा पानी नहीं दिया था, और फिर उससे इसी तरह और नेमतों का सवाल होता जाएगा। सहाबा कहने लगे, या रसूलल्लाह, हम तो जौ की रोटी और वो भी आधा पेट भरते हैं और इतनी सी खाते हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से वही है, क्या तुम पैर बचाने के लिए जूतियां नहीं पहनते? क्या तुम ठंडा पानी नहीं पीते? यानी वो कहने लगे, हम तो जौ की रोटी खाते, वो भी आधी, वो भी पूरी नहीं। तुमसे कहा गया क्या ये नहीं, तुम जूती नहीं पहनते, ठंडा पानी नहीं पीते? यानी ठंडा पानी भी वो नेमत है जिसके बारे में सवाल होगा। पेट भर के खाना भी, सायादार घर भी, मीठी नींद के बारे में भी सवाल होगा कि नींद लेता था ना, सोता था ना। और हमारी टेबल पे कितनी चीजें होती हैं, जब आज खाना बनाने लगे तो सोचें अपनी हांडी में जब चीजें डाल रहे होंगे, ये सारी नेमते हैं, कितने मसाले डाल रहे हैं। फिर एक हांडी थोड़ी पकती है, फिर एक खाना थोड़ी होता है। इसके साथ चटनी भी हो, रायता भी हो, सलाद भी हो, रोटी भी हो, चावल भी हो, फलां भी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मैदे की छनी हुई रोटी भी नहीं कभी खाई थी। और सुबह अलग खाना, शाम अलग खाना, इसका भी अलग सवाल है। लज्जतों का अलग सवाल है, आसाइशों का अलग सवाल है। ये जो लग्जरीज हमारे पास हैं, ये जो आरामदेह चीज़ें हमारे पास हैं, कहीं पंखा चल रहा है, कहीं एसी चल रहा है, जूता है पैर में, गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, नलका खोलते हैं तो पानी आ रहा है, फिर ये जो तो ताकतें अल्लाह ताला ने दी हुई है, बदन की ताकत, कान से सुनता है, आंखों से दिखता है, ये ताकतों का भी सवाल होगा। इन्नस समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, इनमें से हर चीज का सवाल होगा। फरागत का भी सवाल होगा, तुम्हें फरागत दी थी, उस फरागत को तुमने क्या और जॉबें करने में लगा दिया, उस फरागत को तुमने क्या और कसरत की चाहत में लगा दी। आप देखें, इसको ज्वाइन करें, इसको कनेक्ट करें, जो स्टार्ट है आयत सूरत काल हाकुम तकासुर, उसके साथ आप कनेक्ट कीजिए कि उस वक्त कहता है ज्यादा हो ज्यादा हो ज्यादा हो, और ये सोचो कि ये ज्यादा, इसका तुम्हें सवाल का जवाब देना पड़ेगा, इसका ही तो तुमसे हिसाब लिया जाएगा इस ज्यादती का। तुम आज तो बहुत खुश हो रहे हो ना, ज्यादा मिल रहा है, उसके बाद इंसान और ज्यादा अपनी कमाई बढ़ाने के लिए और मेहनत करता है, और बिजनेस बढ़ाना चाहता है, और चीजें लेना चाहता है, और खरीदारी करता है घर में, और चीजें और से उस ऑन टॉप ऑफ देम और लेकर आता जा रहा है। लेकिन इंसान कयामत के दिन इस चीज के ऊपर परेशान होगा कि मेरा हिसाब ज्यादा है, क्योंकि पांच चीजों के, पांच सवालों के जवाब दिए बगैर इंसान के कदम नहीं हिलेंगे, किसी इंसान के भी, चाहे वो नेक है या बद है, किसी के भी कदम नहीं हिलेंगे हशर के मैदान से। पांच सवालों का जवाब दिए बगैर तूने जिंदगी किस में गुजारी, किधर गुजारे थे जिंदगी, तुमने जवानी कहाँ गुजारी, जवानी का हिसाब अलग होना है। हम तो ये सोच के बैठे ना कि जवानी में तो मजा करें, जवानी में तो एंजॉय करें, जवानी इसलिए मिली हुई है, जवानी में कमाइयाँ करें, जवानी में करियर्स बनाएं, वो बुढ़ापा रखा हुआ है अल्लाह अल्लाह करने के लिए, उस वक्त मस्जिदों में चले जाएंगे, उस वक्त अल्लाह अल्लाह कर लेंगे, उस वक्त नेक बन जाएंगे, उस वक्त हज कर लेंगे, सब कुछ बुढ़ापे के लिए रखा। लेकिन जवानी का तो हिसाब अलग है, बुढ़ापा अलग बात है, जवानी में क्या किया, क्योंकि जवानी इंसान के पास पूरी ताकत थी, उसके पास एनर्जी थी काम करने की, उसका बेस्ट प्राइम टाइम था जिंदगी का, उसके पास ख्वाहिशात थी, ड्रीम्स थी, वो अभी कुछ कर सकता था। बुढ़ापा गया, बिल्कुल बिल्कुल कमजोरी की उम्र, ना सद्दे जमीन पे हो पाते हैं, ना पड़ा कुछ जाता है, चश्मे आंखों पे लगे हुए हैं, रोजे रखे नहीं जाते, लागर हो चुके हैं, बिल्कुल कुछ भी ज्यादा सही से इबादत नहीं हो पाती, थक जल्दी जाते हैं। अब ऐसी कमजोरी की हालत में सोचते हैं कि उस वक्त करेंगे हम इबादत, हालांकि जवानी का हिसाब अलग है, आप टाल नहीं सकते जवानी के अमल को बुढ़ापे में। और जवानी कब तक होती है, टीन एज से शुरू हो जाती है, और 40 साल तक तो जवानी ही जवानी है, उसके बाद डाउन द हिल है। इसीलिए तो 30s में 33 बाज जगह पे आता है, 32 आता है कि उस वक्त ये उम्र होगी जब इंसान जन्नत में होगा, यानी इस उम्र का होगा, बिल्कुल जवान, भरपूर जवानी होती है, तो इसमें तो इंसान कहीं और ही लगा होता है। अब जवानों को तो सोचते हैं इनकी कौन सी उम्र है अभी अल्लाह अल्लाह करने की, यानी बुढ़ापे में करें तो फिर सही है, अजीब लगने लगता है हमें तो। अल्लाह ताला उस दिन ये सवाल करेगा, जिंदगी किधर गुजार दी तुमने, क्या यही सी बखेड़ों में अलहाकुम तकासुर में ही लगे रहे, जवानी भी क्या अलहाकुम तकासुर में ही गुजार दी। फिर उसके बाद इंसान से ये सवाल होगा, माल कहाँ से कमाया, हलाल था हराम था, जॉब्स तुम्हारी कैसी थी, किस जगह से कमाइयाँ कर रहे थे, और चलो यहाँ तक तो सही, लेकिन माल खर्च किधर किया। जब मॉल जाते हैं, जब शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो उस वक्त सोचते हैं कि जो मैं ये खर्च कर रही हूँ, मैं सोचती हूँ मेरे पैसे हैं, मुझे कौन मना करेगा, मुझे कौन पूछ सकता है, मैं जिधर मर्जी खर्च करूँ, मैंने मेहनत से कमाया। नहीं, इस पाई पाई का भी हिसाब देना होगा किधर खर्च करते हैं। अगर हस्बैंड ही बीवी से पूछ लेना तो बीवी को परेशानी हो जाती है कि मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं, मैंने किधर खर्च किया, अच्छा नहीं लगता, मुझे कौन सा याद है अब मैंने कहाँ खर्च किया। सोचे अल्लाह के हाँ, हर हर पाई का हिसाब देना पड़ेगा किधर खर्च किया। अल्लाह हू अकबर। और फिर पांचवा सवाल, जो इल्म था उसके ऊपर कितना अमल किया। अब कोई कह दे मैं इसीलिए इल्म लेती ही नहीं हूं ताकि मुझे अमल ना करना पड़े, पर मेरे से सवाल ही नहीं होगा। अब आप सोचें कि अल्लाह ताला के साथ ट्रिक करते हो, अल्लाह ताला को क्या नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, तुमने जानबूझ के नहीं लिया ताकि अमल ना करना पड़े, तो तुम्हारी इससे पूछ खत्म हो जाएगी। और हम जो यहां तक पहुंच गए पूरा कुरान पढ़ के, इसका इल्म लेके, क्या ये सवाल नहीं होगा अमल कितना किया। जहां खुशी हो रही होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक मंजिल हमने पूरी कर दी, वहां पे ये फिक्र भी होनी चाहिए, वहां पे साथ ये एक लगन भी होनी चाहिए, एक शौक भी होना चाहिए और एक अजम भी होना चाहिए कि मैंने इस पे अमल करना है, मैंने जो पढ़ा है मैं फारिग नहीं हो रही बल्कि मैं और मेहनत के लिए तैयार हो रही हूँ। ये फरागत नहीं है, ये एक टुकड़ा जो कागज़ का है वो ले लेना नहीं है, ये मेरी मंजिल नहीं है। मेरी मंजिल ये है कि मैं इस पर अमल करूँ। मेरे अल्लाह ने ये नहीं पूछना तुम्हारे पास कितने सर्टिफिकेट थे, कितनी डिग्रियां थी, उसने पूछना है ये जो इल्म लिया था ना इतने सालों में तुमने उस पर अमल कितना किया। तुम्हारे पास इल्म था, तुम अमल में कितने आगे निकले। और जिसने इल्म ही नहीं लिया, जानबूझ के नहीं लिया, वो दोहरा ही उसके ऊपर तो हो गई ना कि एक तो इल्म ही नहीं लिया तुमने, इसको इतना जरूरी नहीं समझा क्योंकि तुम्हारा अमल करने का कोई प्रोग्राम ही नहीं था, उसका तो सब कुछ ही रॉन्ग हो गया। जिसने इल्म लिया, चलो वो 100 चीज़ों का इल्म लिया था, चलो 50 करना शुरू हो गया, 50 की तो उसके ऊपर खलासी हो गई ना। कुछ कुछ बढ़ रहा है, कुछ अपनी कोताही हो गए इतराफ करता है, कुछ अल्लाह से मांगता है, अल्लाह ताला तू सारा ही पूरा करा देना, भामल बना देना। लेकिन जिसने कुछ भी नहीं किया वो तो बिल्कुल ही जीरो पे खड़ा हुआ। अब ये आखरत का हिसाब किताब कैसे है, एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा कि ये आखरत में हिसाब किताब कैसे होगा। उस्ताद ने जरा ठहर के अपनी जगह से उठ के सारे शागिर्दों में कुछ पैसे बांटे। पहले लड़के को 100 दिरहम दिए, दूसरे को 75, तीसरे को 60, चौथे को 50, पांचवें को 25, छठे को 10 और सातवें को 5, और जिस लड़के ने सवाल पूछा था उसको सिर्फ 1 दिरहम दिया। लड़का को उस्ताद की यह हरकत पसंद नहीं आई, उसने उसको अपनी तौहीन समझा कि इसने मुझे इतना कमतर समझा कि मुझे इतना कम दिया। उस्ताद ने मुस्कुराते हुए सबको देखते हुए कहा, सब लड़कों को छुट्टी है, तुम सब लोग जाके इन पैसों को पूरा पूरा खर्च करो और अब हमारी मुलाकात हफ्ते वाले दिन बस्ती के तंदूर पे होगी। हफ्ते वाले दिन सारे तालिबे इल्म तंदूर पे आ गए जहाँ उस्ताद पहले से ही मौजूद था। सब लड़कों के आ जाने के बाद उस्ताद ने उनको बताया कि तुम में से हर एक इस तंदूर पर चढ़ के मुझे अपने अपने पैसों को कहाँ कहाँ उसने खर्च किया उसका हिसाब देगा। पहले वाला लड़का जिसके पास 100 दिरहम थे, उसको उस्ताद ने 100 दिरहम दिए थे ना, वो दहकते हुए तंदूर की मुंडेर पे चढ़ के उस्ताद ने जब उससे पूछा कि बताओ मेरे दिए हुए 100 दिरहम कैसे खर्च किए, तो जलते तंदूर से निकलते शोलों की तपिश और गर्म मुंडेर की हीट से परेशान लड़का एक पैर उठाता था, एक रखता था, एक उठाता था और खर्च किए हुए पैसों को याद करता था और बताता था, 5 का गुड़ लिया, 10 की चाय ली, 20 के अंगूर लिए, 5 दिरहम की रोटियां ली और इसी तरह बाकी खर्चे बताता जा रहा था और उसके पैर जल रहे थे और जिस्म भी शोलों से झुलस रहा था। हत्ता कि इतनी सी देर में उसको इतनी प्यास भी लग गई, अल्फाज भी लड़खड़ाने शुरू हो गए, बमुश्किल हिसाब देकर नीचे उतरा, हाँप रहा था। उसके बाद दूसरा लड़का, फिर तीसरा लड़का, फिर इसी तरह बाकी लड़के, हत्ता के उस लड़के की बारी आ गई जिसे 1 दिरहम मिला था। उस्ताद ने उसको कहा, तुम भी तंदूर पे चढ़ो और अपना हिसाब दो। लड़का जल्दी से तंदूर पे चढ़ा और बगैर किसी वक्फे के बोला, 1 दिरहम की घर के लिए धनिए की गट्ठी खरीदी थी, और साथ ही मुस्कुराता मैं नीचे उतर के उस्ताद के सामने आके खड़ा हो गया, जबकि बाकी जो लड़के थे वो निढाल पड़े हुए थे, अपने पैरों पे पानी डाल रहे थे, ठंडा कर रहे थे। उस्ताद ने जब सब लड़कों को मुतवज्जे करके इस लड़के को खास तौर सुनाते हुए फरमाया, बच्चों ये कयामत के दिन के हिसाब किताब का छोटा सा मंजरनामा था, हर इंसान से उसको जिस कदर अता किया गया उसके बराबर ही हिसाब होगा। लड़के ने उस्ताद को मोहब्बत से देखते हुए कहा, आपने जितना कम मुझे दिया इस पर मुझे रश्क है और आपकी अता पे प्यार आ रहा है। तो ये तो उस्ताद था, अल्लाह ताला की मिसाल तो बहुत आला है। तो ये अरब मीडिया में एक आई था नोट, तो जिसका ये तर्जुमा, तो देखिए हिसाब किताब आज तो हम इस चीज़ के ऊपर सोचते हैं ना, मुझे ज्यादा मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, कयामत के दिन इसी ज्यादा को अपने लिए मुसीबत समझेंगे कि हाय मेरे पास इतना ज्यादा था, मैं कैसे इसका हिसाब किताब दूंगा। और जिनके पास कम होगा वो खुश होके जल्दी से हिसाब किताब दे के पहले ही जन्नत में पहुंच भी जाएंगे और बाकी अभी खड़े हुए देखते ही रह जाएंगे, बाकी अपने हिसाब किताब में फंसे होंगे क्योंकि उनका बैगेज ज्यादा है। आप देखें जब आपके पास सामान बहुत ज्यादा होता है, आपको एयरपोर्ट पे रोका जाता है और कहा जाता है खोलो अपना सामान, जिसके पास कुछ भी नहीं था, हैंड कैरी था, वो निकल भी गया, जिसके पास जितना ज्यादा है वो तो उस समय सामान खोलता जा रहा है, खोलता जा रहा है। तो अल्लाह ताला पूछेगा, तुमको अक्ल दी थी, तुम्हें समझ दी थी, तुम्हें इल्म दिया था, तुम्हारे पास बच्चे थे, औलाद थी, तुम्हें मैंने ये दिया ये दिया ये दिया। ये भी कहा जाता है कि ये कहा जाएगा, ऐ इब्ने आदम मैंने तुझे घोड़े दिए, ऊंटों पे सवार किए, औरतें तेरे निकाह में दी, यानी औरत है तो आदमी, आदमी है तो औरत, तुझे मोहलत दी यानी जिंदगी इतनी दी थी, हंसी खुशी आराम राहत से जिंदगी गुजार रहा था, अब बता इसका शुक्रिया कहाँ है? तो हम शुक्र अदा करते हैं क्या उन नेमतों? ये नहीं कि आप कहें कि मैं तो एक तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह की पढ़ लेती हूँ, ये नहीं है, शुक्र है उस नेमत को लेकर, उस नेमत देने वाले को पहचानना और उसकी इताअत करना, उसके आगे झुके रहना, उसके रास्ते में काम करना, उसके कलमे को बुलंद करने के लिए मेहनत करना, क्योंकि जो कुछ हमें दिया हुआ है वो अल्लाह ताला ने दिया हुआ, वो हर हर नेमत याद करवा के पूछेगा। और हमारे पास तो इतनी नेमतें हैं, इतनी बेशुमार नेमतें, हम गिनना भी चाहें तो गिन नहीं सकते अपनी नेमतों को। आज हम इतनी नेमतों में हम अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड हैं, दुनिया में इस वक्त हमारे मुकाबले में ही, हालांकि उनके पास भी नेमते हैं, लेकिन हमारे मुकाबले में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनके पास हमारे से बहुत कम है, और वो बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ जिंदगी एक्सचेंज कर लें, हम उनकी जगह हो जाएं, वो हमारी जगह हो जाएं। हमें आज लगता है ना, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हाय खाने को तो कुछ है ही नहीं, हाय पहनने को तो कुछ है ही नहीं, फलां चीज नहीं है, फलां चीज नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी जगह लेना चाहेंगे। अल्लाह अकबर। सोच लेना कि अगर फारिग वक्त का भी हिसाब हो रहा है, अगर सेहत का भी हिसाब हो रहा है, अगर लंच और डिनर का भी हिसाब हो रहा है, अगर ये कुरान की नेमत का भी हिसाब हो रहा है, हम किस किस का जवाब देंगे? और हम हिल नहीं सकते जब तक कि हमें सारे जवाब ना दे दें। तो ये है क्लाइमेक्स, ये है इस जिंदगी का मकसद, कि इसके लिए ये जिंदगी दी गई थी कि एक दिन इसके बारे में पूछ पड़ताल होगी, एक दिन पूछा जाएगा, ये जवानियों का भी पूछा जाएगा, इस एनर्जी का भी पूछा जाएगा, और अल्लाह ताला खुश होता है उस नौजवान से जो गुनाहों की तरफ नहीं जाता जवानी में, उसके पास जवानी है, वो गुनाहों की तरफ नहीं जाता। ऐसे में फिर उलमा कहते हैं ना, ऐसे में तो अल्लाह अकबर, उस दिन अगर कोई नाकाम हो जाता तबाही है उसके लिए, इसलिए क्योंकि उसकी इकाई उसकी दहाई के ऊपर गालिब आ गई। क्या मतलब इकाई? गुना तो एक ही लिखा गया था, और दहाई क्या थी? नेकियां 10 गुना लिखी गई, लेकिन उसके बावजूद वो इतना अल्हाक व मुतकासुर में मगन था कि आज उसकी दहाई भी, उसकी 10 टाइम्स था ना, उसके ऊपर उसका 1 टाइम वाली चीज गालिब आ गई, उसका 1 यूनिट उसके 10 यूनिट्स पे गालिब आ गया, यानी वो इतना अल्हाक मुतकासुर में था, और उसको होश ही नहीं आया कि ये नेमते हैं मेरे पास, मैंने इन नेमतों को किधर लगाना है। वो नेमते मिलने के बाद और नेमते मिल जाएं, और फिर इनमें मुकाबले और इनमें फखर के ऊपर ही उसने जिंदगी गुजार दी। नेमतों को अल्लाह के रास्ते में कब यूज करना था? ये आंखें कब यूज होती? ये कान कब यूज होंगे? ये जुबान कब यूज होगी? ये एनर्जी कब यूज होगी कि अल्लाह के रास्ते में निकलें, इन इनके जरिए अल्लाह के दीन की खिदमत को करें, इनको लगाएं। तो ये इंसान समझे तो पूरी जिंदगी का आपको एक लायहा अमल मिल जाता है, कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए मुझे। और अल्लाह ताला हमें इसकी पूछ ना करे नेमतों की, जवाब देना होगा अल्लाह ताला जिसके सरफे नजर कर ले, देखे और उसको जाने दे, और पूछ पड़ताल ना करे, और ये कह के ही कि मैंने तुम्हें ये नेमत दी ये नेमत दी ये नेमत दी, और फिर जाने दे, इसके ऊपर ही हमारी बचत है, क्योंकि एक नेमत का भी पूछ लिया गया ना, जिंदगी किधर गुजारी, फलां दिन में फलां डेट पे ये तुम क्या कर रहे थे, तो क्या कहेंगे? अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमा दे। सुनते हैं तिलावत इस सूरत की।
بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن